कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग। लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग्म, अपनी बात अपनी भाषा में।
हिंदी युग्म की ओर से मैं मृदुल कीर्ति अमेरिका से कवि सम्मेलन के सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ। यह कवि सम्मेलन का 8वां चरण है। सप्तपदी हम चल चुके, जो बंधनों को सुदृढ़ करने का प्रतीक है। 8 अंक का भी विशेष महत्व है, जैसे जन्माष्टमी, दुर्गाष्टमी, अष्टांग योग आदि। इस 8वें कवि सम्मेलन की विशेषता है कि ये 2 महाद्वीपों के भाव सेतु का प्रारूप है, और आज का कवि सम्मेलन सामान्य परिपाटी से कुछ हटकर भी है। हम इसे विशेषांक भी कह सकते हैं। ये विशेषांक इसलिए क्योंकि यह अनुराग शर्मा के काव्य संकलन पर आधारित है, जिसका शीर्षक पतझर, सावन, बसंत, बहार है। कवि सम्मेलन के सभी श्रोता अनुराग शर्मा के नाम से पूर्व परिचित हैं, क्योंकि वे कवि सम्मेलन के तकनीकी पक्ष के स्तंभ हैं। इसके तकनीकी पक्ष का अनुराग शर्मा जी ही संवहन करते हैं। वे एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी भी हैं। इस काव्य संकलन के संपादक श्री अनुराग शर्मा जी मूलतः एक कवि हैं। उन्होंने हिंदी व अंग्रेजी में अनेकों कहानियां, कविताएं एवं लेख लिखे हैं। इंडिया एज एन आईटी सुपर पावर लिख चुके हैं। आजकल वे अपने उपन्यासों पर काम कर रहे हैं। वे पिट रेडियो के संस्थापक हैं। आचार्य विनोबा भावे के गीता प्रवचन की ऑडियो बुक बना रहे हैं। हिंद युग्म पर ऑडियो कथा वाचन का बीज भी आपने ही डाला। पतझर, सावन, वसंत, बहार, 4 मौसम, 2 महाद्वीप, 6 कवि और 126 कविताएं। इस काव्य संग्रह में पतझड़ भी है और बहार भी है। इस संग्रह में सावन और बसंत तो हैं ही, इन 4 मौसमों से आगे भी बहुत कुछ है। रिश्ते नातों के समीकरण, भूख और गरीबी की उलझन, दंगे और युद्ध की विभीषिका, इनके साथ साथ प्रेम और आशीष का सम्मोहन भी बिखरा पड़ा है इस काव्य संग्रह में। यहाँ सिर्फ कोरे सवाल नहीं है, यहाँ है चिंतन। हमारे कवि पतझड़ में से वसंत ढूंढ कर लाए हैं। इस काव्य संकलन की एक विशेषता ये भी है कि इसमें अन्य 5 कवियों की रचनाओं का भी संकलन किया गया है। सर्वप्रथम मैं वैशाली जी का आवाहन करती हूँ। वैशाली जी का संक्षिप्त परिचय भी हमारी काव्य परंपरा का हिस्सा है। वैशाली सरल का अधिकांश जीवन ग्वालियर में बीता। वे 10 वर्ष की आयु से ही कविता लिख रही हैं। 1997 में उनकी पहली कविता तितली प्रकाशित हुई। भारत में इंजीनियरिंग की उपाधि पाने के बाद आजकल वे कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर विज्ञान से MS कर रही हैं। ये उनका पहला काव्य संग्रह है। वैशाली सरल जी की रचनाओं के शीर्षक हैं बीते लम्हे, दस्तक और तीसरा कभी कभी। वैशाली जी आप आए और मुखरित हों।
बीते लम्हे, तन्हाई करती है हजारों बातें, मगर यहाँ सुनता कौन है। कहती है ये आंखें क्या जाने, मगर समझता कौन है। दुनिया में किसको वक्त है किसी के लिए, फिर पूछते हैं अकेला क्यों है। दर्द देकर उम्मीद करते हैं मुस्कुराने की, फिर कहते हैं तमाशा क्यों है। लोग चलते जाते हैं वक्त के साथ, फिर बीते लम्हे याद आते क्यों है, फिर बीते लम्हे याद आते क्यों है। दस्तक, हर लम्हा मेरे जज्बातों से खेल गया कोई, जब भी दिल लगाया दिल तोड़ गया कोई। एहसास जो अपना सा लगा कभी, एक अफसाना बनाकर भूल गया कोई। चाहत थी जिंदगी भर मुस्कुराने की, 2 लम्हे देकर खुशी के रुला गया कोई। चाह था ख्वाबों की हकीकत में बदलना, हकीकत को ख्वाब बना गया कोई। एक तस्वीर जो बनाई थी इन आंखों ने, देकर आंसू वो तस्वीर मिटा गया कोई। इंतजार में जिसके बरसों दिए गुजार, देकर दस्तक फिर ना आया वो कोई। कभी कभी, कभी कभी गम में मुस्कुराना पड़ता है, अपनों के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। यादें कभी नहीं जाती इस दिल से दूर, वक्त से मिलने के लिए खुद को बुलाना पड़ता है। क्यों नहीं रोते पूछता है आईना भी, क्या जाने वो कि हर आंसू छुपाना पड़ता है। दर्द तो मिला है अपनों से हर कदम, जिंदा रहने के लिए हर दर्द पी जाना पड़ता है। अपनों से दूर जाने का गम हर लम्हा होता है। मंजिल पाने के लिए घर से तो दूर जाना पड़ता है। धन्यवाद।
कभी कभी कविता के सारांश में कुछ कहना चाहूंगी कि यदि कोई बना है तो अवश्य ही कोई उसके लिए मिटा है। बीज गलता है तो वृक्ष पलता है। कहने का तात्पर्य है सृजन के नीचे श्रम का योगदान है। किसी ने दूरियां सही है तभी मंजिलें मिली है। यही भाव आपने वैशाली सरल जी से सुने। अगला परिचय मैं विभा दत्त जी का दे रही हूँ। श्रीमती विभा दत्त जिनके बहुआयामी व्यक्तित्व में एक माँ, पत्नी, गृहिणी, शिक्षिका, व्यवसायी का समन्वय है। उन्हें हिंदी, अंग्रेजी व गुजराती में महारत हासिल है। विभा जी गुजरात में पली बढ़ी और उन्होंने बहुत दिनों तक पढ़ाया भी है। वर्षों तक प्रधानाचार्य भी रही। संगीत और साहित्य से उनका बहुत पुराना परिचय है। उनके पिता अपने भाई के साथ लाहौर के साथ उस पंचोली प्रोडक्शन के सह स्वामी रहे जिसे मल्लिका, तरन्नुम, नूर जहां, सुरैया, ओम प्रकाश, प्राण आदि मंजे हुए कलाकारों को पहली बार पर्दे पर लाने का गौरव प्राप्त है। वे अल्पायु से ही कविता लिख रही हैं। कहने दो और मेरी बहना, ये दो विभा दत्त जी की कविताओं के शीर्षक हैं। कहने दो में कृतज्ञ भाव से वो कुछ कहना चाहती हैं और कृतज्ञ भाव से सच में वे स्वयं अपने आप को समर्पित भाव में लाती हैं। और वैसे है भी ये कि यदि कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है तो कृतज्ञता सबसे पहले एक मूल संवेदित भाव होना चाहिए कि किसी ने मेरे लिए कुछ करा है तो उसे हमें धन्यवाद में व्यक्त भी करना है। मेरी बहना में बहन का निस्वार्थ निश्चल भाव है जो माँ की ममता की ऊंचाइयों को छू रहा है।
कहने दो, रोको मत, कृपया आज मुझे कहने दो, मेरा तुम्हारे प्रति आभार जताने दो। जीवन के पल पल में, हर खुशी में, हर गम में, हर वसंत में, हर पतझड़ में, मेरे जीवन बगिया की बागबान बनी रही तुम। मानकर मेरे सुख को अपना सुख, मेरे दुख को अपना दुख, मेरे मन की बुद्धि तुम, मेरे तन की शक्ति तुम। रोको मत, कृपया आज मुझे कहने दो, मेरा तुम्हारे प्रति आभार जताने दो। मेरी बहना, भाई बहन के जन्म के संबंध को, राखी के उस प्रेम को, कच्चे धागे के अटूट बंधन को आज मैं शब्दों में बांधने की चेष्टा करता हूँ। बचपन के वे खेल कूद के दिन, कभी मजाक, कभी मस्ती, कभी वो मीठा झगड़ा, कभी लड़ाई, कभी चिढ़ना व रूठना, फिर ममता की वही मूरत। बचपन पीछे छूटा, विदा हुई घर से जब, पता लगा पहली बार घर तुमसे ही आबाद था। बनकर अपने पति की प्यारी पत्नी, मन वचन कर्म से सप्तपदी के सातों वचन निभाती चली। हर पल सुख में और दुख में, हर घर द्वीप और देश में आदर्श जीवन संगिनी बनी रही तुम। आज देखता हूँ तुम्हारी छवि, वही माँ की ममता या माँ की ही मूरत।
विभा जी की ये दोनों ही रचनाएं बड़ी सरल, सहज, सरस और सौम्य लगी, मन को छूने वाली लगी। अब हम आपका परिचय श्री अतुल जी से कराते हैं। अतुल शर्मा जी प्रकृति से प्रेम रखने वाले एक बहुत ही संवेदनशील कवि हैं और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत। सरल और सहज शैली में रिश्तों तथा मन की कोमल भावनाओं को व्यक्त करना पसंद करते हैं। सहमत भी होते हैं और विरोध भी दर्ज करते हैं, पर उसे व्यक्तिगत नहीं रखते। एक अर्ध सैनिक बल के परिवेश में अपनी जिम्मेदारियों, उत्तरदायित्वों और कर्तव्य संवहन करते हुए अपने कोमल हृदय के बीच संतुलन बनाना तो कोई उनसे सीखे। रिश्ते और चेहरे दो शीर्षक से उनकी दो रचनाएं। अतुल शर्मा जी, मैं आपका आवाहन करती हूँ, आप आए और अपने भाव लेकर मुखरित हों।
रिश्ते, रिश्ते जो कभी होते हैं अपने से और बेगाने से कभी, रिश्ते जो होते हैं दिल के करीब और हजारों मील दूर होते हैं कभी, रिश्ते जो कभी हंसाते हैं और रुलाते भी कभी, रिश्ते जो कभी होते हैं मीठे से और हो जाते हैं कड़वे कभी, रिश्ते जो कभी गुदगुदाते हैं और देते हैं अकुलाहट कभी, रिश्ते जो होते हैं सहज अभी और देने लगते हैं झुंझलाहट कभी, रिश्ते जो मस्तक गर्वित करते हैं और शर्म से गर्दन झुकाते हैं कभी, रिश्ते जो कभी त्याग मांगते हैं और जीवन भी कभी, रिश्ते जो कभी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं क्यों आ जाते हैं कंधे पर कभी। इस कविता का शीर्षक है तेरे मेरे चेहरे। बचपन से मैं चेहरे देखता रहा हूँ, अपने से पराए से, सहमे से मुस्कुराए से, खिलखिलाकर हंसते हुए चेहरे, पीड़ा से रोते हुए चेहरे, सच्चे चेहरे, झूठे चेहरे, कुछ चेहरे जो साथ रहे और फिर धुंधले से हो गए, कुछ चेहरे जो अचानक मिले और साथ हो गए, कुछ चेहरे जो कुछ दूर साथ चले फिर हाँफ कर अलग हो गए, कुछ चेहरे जो बेगाने से थे अपने हो गए, कुछ चेहरे जो अपने से थे बेगाने हो गए, कुछ चेहरे जो जन्मे और अपने हो गए, कुछ चेहरे जो बहुत अपने से थे फ्रेमों में जड़ गए और मालाओं में छुप गए। इन चेहरों ने बहुत भ्रमित किया है क्योंकि हर चेहरे के अंदर एक चेहरा छुपा है और अक्सर मैंने भी अपने चेहरे को छुपा कर रखा है। धन्यवाद।
रिश्तों और चेहरों पर चढ़े हुए झूठ और बनावटीपन के आवरण महसूस तो सबको हो जाते हैं, लेकिन कोई साहसी ही इनका अनावरण कर पाता है और सच में ये बड़ी पीड़ादायक स्थिति होती है जब हमें चेहरे के अंदर चेहरा दिखाई देता है और रिश्तों में इतना खोखलापन दिखाई देता है। अब हम आपका परिचय करा रहे हैं पंकज गुप्ता जी से। पंकज गुप्ता जी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत हैं और सपरिवार दिल्ली में रहते हैं। सामाजिक विषयों पर ज्यादा लिखते हैं। उनकी कविताएं अनेक हिंदी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। ये उनका पहला काव्य संग्रह है। वे CRPF समाचार के संपादक भी हैं। उनकी दो कविताएं कब आओगे बुद्ध और मैं खाने, इन दो शीर्षकों से पंकज गुप्ता जी अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। पंकज जी आप आए, आपका स्वागत है।
मृदुल जी और दर्शकों से क्षमा चाहूंगा कि आज पंकज गुप्ता जी स्वयं नहीं आ सके, तो उनकी दो रचनाएं मैं अनुराग शर्मा पिट्सबर्ग से पढ़ रहा हूं। आइए आनंद लेते हैं पंकज गुप्ता की दो रचनाओं का। धन्यवाद। कब आओगे बुद्ध, अहिंसा की इस धरती पर फिर होने को है युद्ध, अब की फिर एक बार कहो तुम कब आओगे बुद्ध। अस्त्र शस्त्र की गर्जन से मचा हुआ है क्रंदन, विध्वंस की आशंका से अशांत हुआ जनजीवन, लगता है कि शांति के सब मार्ग हुए अवरुद्ध, अब की फिर एक बार कहो तुम कब आओगे बुद्ध। घृणा और उन्माद का छाया हुआ है अंधकार, घायल हुई है मानवता, मचा हुआ है चीतकार, मानो प्रकृति सृष्टि से हुई हो बहुत ही क्रुद्ध, अब की फिर एक बार कहो तुम कब आओगे बुद्ध। आओ फिर से फैला दो प्रेम और सद्भाव, भर दो मानवता के अंग पर लगे हुए सब घाव, कर दो फिर से जगत में विचार सभी के शुद्ध, अब की फिर एक बार कहो तुम कब आओगे बुद्ध। मैखाने। पीने वाले जो गम अपने मैखानों में छोड़ आते हैं, जरा सोचो तो ये मैखाने कहाँ इतना दर्द छुपाते हैं। कुछ गम मिलते हैं साकी को जब मायकश जख्म दिखाते हैं, कुछ गम रोती हुई शम्मा के अशकों में घुल जाते हैं, कुछ गम बनते हैं गीत गजल, कुछ अफसाने बन जाते हैं, कुछ बन के नशा, कुछ बन के मजा, कुछ बन के धुआं उड़ जाते हैं, कुछ गम बची हुई मय के साथ बोतल में ही रह जाते हैं, कुछ रह जाते पैमानों में, कुछ अशकों में बह जाते हैं, कुछ गम बन जाते हैं मरहम, कुछ गम ही दवा हो जाते हैं, अपने जख्मों की खातिर ही मयकश मैखानों में आते हैं।
कब आओगे बुद्ध, जगत की त्रासदी से आक्रांत मन बुद्ध का आवाहन कर रहा है। वास्तव में कब आओगे? ये नितान सच्चे समय की पुकार है। मेरा भी उद्घोष इसमें सम्मिलित कर लें। अब समय की पुकार है, शांति होनी ही चाहिए। मैखाने के शीर्षक से पंकज जी, आपकी गजल सचमुच बहुत अच्छी है। कुछ गम बनते हैं गीत गजल, कुछ अफसाने बन जाते हैं, कुछ बन के नशा, कुछ बन के धुआं उड़ जाते हैं। आपकी गजल की कुछ पंक्तियां सचमुच मन को छू गई हैं। इसे अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो, कछ दुख होत जगत में ऐसे, जैसे हियमा लागी फांस, हर पल सांस चुभन अति कसकन, कैसे लूं अब अगली सांस। जाकी लगी सोए गति जाने, या जाने जो देवनहार, को कही सके पीर की पीड़ा, ना कोई वचन बतावनहार, को वचन व्याकरण कथनी, समर्थ ना ही बतावनहार। पीड़ा का दर्शन तो ऐसा होता है कि बस जिसके लगी वही जाने। ऐसे उत्कृष्ट कवियों की श्रृंखला में अब हमारा संकेत श्री प्रदीप मनोरिया जी की तरफ है। श्री प्रदीप मनोरिया जी अशोक नगर मध्य प्रदेश के एक कवि हैं। आपने जैन ग्रंथ का अनुवाद संस्कृत से हिंदी में किया है। प्रदीप जी, आपके इन उत्कृष्ट कार्यों के लिए विशेष साधुवाद देती हूँ और आपकी रचनाएं आमंत्रित करती हूँ, और आप कृपया आए और अपने इतने अच्छे भावों से हम सबको भी आप्लावित करें। प्रदीप मनोरिया जी दो शीर्षकों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। एक संवेदना, सच्ची संवेदित करने वाले भाव आपने इस रचना में दिए हैं, और ये पूरी मानवता से एक प्रश्नायित भाव है कि ऐसी पीड़ा औरों की देख के क्या तुम्हारे स्पंदन में उतार चढ़ाव नहीं आता। और दूसरी रचना है एक अजन्मी बेटी की व्यथा। इस शीर्षक से प्रदीप मनोरिया जी ने बस इतना सुंदर लिखा है, बेटे की भारी चाहत में माँ क्यों तुम ये भी भूल गई, बहनों के शव पर पग रखकर भाई ने धरती पाई है, हक जन्म का मेरा मत छीनो, मुझ में भी आस चहकती है, आंगन में लाऊंगी खुशियां, मैं तीज त्योहार मनाऊंगी, भाई को बांधूंगी राखी, फिर क्यों तू मुझसे जलती है। बहुत सुंदर रचना, और ये समाज में आई हुई बुराइयों के ऊपर बड़े खुलकर कही हुई बात है, और इस रचना का स्वागत है। आप आए प्रदीप मनोरिया जी।
एक कविता प्रस्तुत है, संवेदना। बूंदों पर तो छंद लिखे हैं, गजल लिखी बौछारों पर, तारीफों के बंद लिखे हैं, गीत लिखे त्योहारों पर। बूंदों पर तो छंद लिखे हैं, गजल लिखी बौछारों पर, तारीफों के बंद लिखे हैं, गीत लिखे त्योहारों पर। किंतु लेखनी सूखी रहती निर्धन की कठिनाई पर, चिंता है किंतु न चिंतन बढ़ती हुई महंगाई पर। एक बार तो लिख कर देखो ठग वायदा बाजारों पर, बूंदों पर तो छंद लिखे हैं, गजल लिखी बौछारों पर। तपे जेठ की घोर दुपहरी बेघर रह मैदानों में, तपे जेठ की घोर दुपहरी बेघर रह मैदानों में, लथपथ रहे पसीना तन पर करते काम खदानों में। एक बार तो छू कर देखो उन दिल की दीवारों पर, बूंदों पर तो छंद लिखे हैं, गजल लिखी बौछारों पर, तारीफों के बंद लिखे हैं, गीत लिखे त्योहारों पर। जाड़ों में तन रहे ठिठुरता पग नंगे रह सड़कों पर, सूती कथरी खींच तान कर डाल रहा जो लड़कों पर। जाड़ों में तन रहे ठिठुरता अध नंगे रह सड़कों पर, छोटी कथरी खींच तान कर डाल रहा जो लड़कों पर। एक बार तो हाथ रखो अब इन मजबूरी के तारों पर, बूंदों पर तो छंद लिखे हैं, गजल लिखी बौछारों पर, तारीफों के बंद लिखे हैं, गीत लिखे त्योहारों पर। निर्धन की कुटिया छप्पर की टपक रही बरसातों में, निर्धन की कुटिया छप्पर की टपक रही बरसातों में, बर्तन सारे बिछा खोज पर जाग रहा जो रातों में, एक बार तो लिख कर देखो इनकी करुण पुकारों पर, बूनों पर तो छंद लिखे हैं, गजल लिखी बौछारों पर, तारीफों के बंद लिखे हैं, गीत लिखे त्योहारों पर, तारीफों के बंद लिखे हैं, गीत लिखे त्योहारों पर। धन्यवाद। एक और गीत प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है एक अजन्मी बेटी की व्यथा। उस बेटी की व्यथा जो गर्भ में से अपनी व्यथा को, अपने दुख को, अपने दर्द को कहना चाहती है, तो जो छलके नहीं निगाहों से उन आंसू की अभिव्यक्ति है, हक जन्म का मेरा मत छीनो मुझ में भी आस चहकती है। जो छलके नहीं निगाहों से उन आंसू की अभिव्यक्ति है, हक जन्म का मेरा मत छीनो मुझ में भी आस चहकती है, नीले अंबर की छैया में अब जन्म मुझे भी लेना है, नीले अंबर की छैया में अब जन्म मुझे भी लेना है, कुछ उम्मीदें कुछ आशाएं दिल में मेरे भी दहकती हैं, हक जन्म का मेरा मत छीनो मुझ में भी आस चहकती है, जो छलके नहीं निगाहों से उन आंसू की अभिव्यक्ति है। विज्ञान ज्ञान से जान लिया है गर्भ में ये कन्या तेरी, क्या दोष रहा इसमें मेरा, मेरी क्या इसमें गलती है, हक जन्म का मेरा मत छीनो मुझ में भी आस चहकती है, जो छलके नहीं निगाहों से उन आंसू की अभिव्यक्ति है। तूने भी जन्म लिया था फिर मुझको जीवन का बीज दिया, तूने भी जन्म लिया था फिर मुझको जीवन का बीज दिया, अब विवेक शूली पर रख हत्या से तू ना डरती है, हक जन्म का मेरा मत छीनो मुझ में भी आस चहकती है। बेटे की भारी चाहत में माँ क्यों तुम ये भी भूल गई, बेटे की भारी चाहत में माँ क्यों तुम ये भी भूल गई, कि बहनों के शव पर पग रखकर भाई ने पाई धरती है, हक जन्म का मेरा मत छीनो मुझ में भी आस चहकती है, जो छलके नहीं निगाहों से उन आंसू की अभिव्यक्ति है। आंगन में लाऊंगी खुशियाँ मैं तीज त्योहार मनाऊंगी, भाई को बांधूंगी राखी फिर भी क्यों मुझसे जलती है, हक जन्म का मेरा मत छीनो मुझ में भी आस चहकती है। अंतिम बंध है, माँ शब्द मात्र संबोधन में ममता का भाव ही गर्भित है, माँ शब्द मात्र संबोधन में ममता का भाव ही गर्भित है, मुझको मरने का खौफ नहीं तू तेरी ममता को हरती है, हक जन्म का मेरा मत छीनो मुझ में भी आस चहकती है। एक बार और मैं इस आखिरी बंद को प्रस्तुत करना चाहूंगा कि माँ शब्द मात्र संबोधन में ममता का भाव ही गर्भित है, मुझको मरने का खौफ नहीं तू तेरी ममता को हरती है, हक जन्म का मेरा मत छीनो मुझ में भी आस चहकती है, जो छलके नहीं निगाहों से उन आंसू की अभिव्यक्ति है, हक जन्म का मेरा मत छीनो मुझ में भी आस चहकती है।
मनोरिया जी, आपकी रचनाएं बहुत ही सारगर्भित और समाज में फैली बुराई को उजागर करने का बहुत ही अच्छा सशक्त भाव पक्ष है, और आपकी इन रचनाओं के लिए आपको धन्यवाद। अब बारी है श्री अनुराग शर्मा जी की, जो इस काव्य संग्रह के संपादक हैं, और ये जब से कवि सम्मेलन हुआ है तो अनुराग शर्मा जी की एक रचना जरूर होती है, और उसमें उनकी कहने के अंदाज से आप सभी परिचित हैं कि ये आते हैं, भूमिका भी नहीं होती, खट से बात कहकर चले जाते हैं। आज भी उनकी छोटी छोटी पर एक बड़े गहरे भाव में कुछ कुछ लाइनें बहुत मर्म को छू रही हैं। मैं सोचती हूँ इनका जीवन के प्रति एक बड़ा ही सपाट दर्शन है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, साफ कहते हैं, साफ बोलते हैं, साफ लिखते हैं। आप उनसे ही सुने। टीस एक टीस सी उठती है, दूसरा शीर्षक है बिखरा मन, तीसरा तुम बिन चौथा नहीं होता। ये चार शीर्षकों से अनुराग शर्मा जी अपने भाव की अभिव्यंजना कर रहे हैं। अनुराग जी आप आए, आपका स्वागत है, आप अपने भाव अभिव्यंजना से अभिव्यक्त करें और हम आपको सुनना चाहते हैं।
नमस्कार मित्रों, मेरी पहली कविता का शीर्षक है टीस। एक टीस सी उठती है, रात भर नींद मुझसे आंख मिचौली करती है। मन की अंगुलियां बार बार तुम्हें खत लिखती हैं, दीवानी नजरें हर आहट पे दौड़ती हैं दरवाजे की तरफ। शायद ये तुम होगे, फिर लगता है नहीं, तुम तो अपनी ही दुनिया में मगन, अपने ही रंग में रंगे, अपने सुख दुख में खोए, अपनों से घिरे, मेरे अस्तित्व से बेखबर। मैं समझ नहीं पाता कि सिर्फ मेरे नसीब में अकेलापन क्यों है। अक्सर एक टीस सी उठती है। इस रचना का शीर्षक है बिखरा मन। जब तुम्हें दिया तो अक्षत था, संपूर्ण चूर्ण बिखरा है मन। भूकंप हुआ धरती खिसकी, क्षण भर में बिखर गया जीवन। घर सारा ही तुम लेके गए, कुछ तिनके ही बस फेंक गए। उनको ही चुनता रहता हूँ, बीते पल बुनता रहता हूँ, बीते पल बुनता रहता हूँ। मेरी अगली रचना का शीर्षक है तुम बिन। वक्त तुम बिन कभी गुजरता नहीं, बोझ कांधे से ज्यों उतरता नहीं। शहर सुनसान सा लगे है मुझे, आपका जिक्र कोई करता नहीं। दिल तो पत्थर सा हो गया यारब, मौत के नाम से भी डरता नहीं। चिन दिया आपने दीवारों में, कैसा बदबख्त हूं कि मरता नहीं। वक्त के सामने हुआ बेबस, लाख रोका मगर ठहरता नहीं। मेरी अगली रचना का शीर्षक है नहीं होता, और काफी हद तक इस रचना में मेरे जीवन का दर्शन छिपा हुआ है। प्रस्तुत है नहीं होता। बात तो आपकी सही है ये, थोड़ा करने से सब नहीं होता। फिर भी इतना तो मैं कहूंगा ही, कुछ न करने से कुछ नहीं होता। एक खुमारी सी छाई रहती है, उन पे कुछ भी असर नहीं होता। लोग दिन में नशे में रहते हैं, मैं तो रातों को भी नहीं सोता। खून मेरा भी खूब खौला था, अपना सब क्रोध पी गया, लेकिन कुछ न कहने से कुछ न बदला था। कुछ भी कहता तो झगड़ा ही होता। सच ही कहता था दिल बुलंद रखो, डरना मरने से भी बदतर है। दम लगाते तो जीतते शायद, लेखा किस्मत का सच नहीं होता, लेखा किस्मत का सच नहीं होता। धन्यवाद।
इस काव्य संग्रह का शीर्षक पतझर सावन बसंत बहार है। बसंत का पक्ष अनछुआ रह गया। मैं अनुराग जी से कहूंगी कि बसंत के पक्ष में अपनी एक रचना सुनाए।
मन की उमंग ज्यों जल तरंग, कोयल की तान दैवी रसपान। टेसू के रंग यारों के संग, बालू पे शंख तितली के पंख। फल अध कच्चे इतराते बच्चे, फूलों के गुच्छे बादल के लच्छे। रक्ताभ गाल और बिखरे बाल, सर्दी का अंत मधुरिम वसंत। धन्यवाद।
छोटे छोटे शब्दों में सार गर्भित रचना अनुराग जी ने अभी आपको सुनाई। बसंत जीवन का जीवंत पक्ष है। बसंत ही तो ऊर्जा का स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है। इसीलिए बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की अभ्यर्थना का प्रचलन भारत में है। प्रकृति भी पीले पीले फूलों से सरसों के खेत भर देती है। और हमारी भारतीय संस्कृति में पीली पाती का अर्थ है निमंत्रण, और शुभ निमंत्रण की पाती। जब हम कोई शुभ काम करते हैं तो पीली पाती भेजते हैं। प्रकृति ने भी खेतों में पीले फूल खिलाकर जैसे पीली पाती बांट दी हो। पतझर के बंद खुले और झरझर मकरंद झरे, बांट दई खेतन ने पीली पीली पाती, पाहुन प्रवासी को धड़कने बुलाती। यह सारा जग है अतल सिंधु, सबको ही अलग अलग बहना। दो लहरों का छड़ छड़ के योग, जब मिलो सदा हर्षित रहना। अब करो दुखों का अंत अंत, जब मुदित मना तब ही बसंत। हर ओर खिले हैं पीत पुष्प, स्वागत बसंत स्वागत बसंत। ये पीत पुष्प हैं पीत पत्र, ये प्रकृति निमंत्रण हर्ष सत्र, हो अंतर मन हर्षित अनंत, स्वागत बसंत स्वागत बसंत। कालजयी कृतियों के प्रकल्प की श्रृंखला में आज हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं एक तेजस्विनी कवित्री को, जिनका जन्म सन 1904 में इलाहाबाद जिले के निहालपुर ग्राम में हुआ था। खंडवा के ठाकुर लक्ष्म सिंह से विवाहोपरांत वे जबलपुर आ गईं। उन्होंने 1921 के असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। नागपुर में गिरफ्तारी देकर असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार वे पहली महिला सत्याग्रही बनी। 1923 और 1942 में भी वे जेल गईं। उनकी अनेकों रचनाएं आज भी उसी प्रेम और उत्साह से पढ़ी जाती हैं, जैसे आजादी के पूर्व के दिनों में सेनानी का स्वागत, वीरों का कैसा हो बसंत और झांसी की रानी उनकी ओजस्वी वाणी के जीवंत उदाहरण है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये रचना कोई सुभद्रा कुमारी चौहान को ना जाने लेकिन इस रचना से सभी परिचित हैं। वे जितनी वीर थीं उतनी ही दयालु भी थीं। 1948 में अपनी कार के आगे आ गई एक मुर्गी की जान बचाने के प्रयास में उनकी कार इस प्रकार दुर्घटनाग्रस्त हुई कि हमें इस महान कवयित्री और वीर स्वतंत्रता सेनानी को खोना पड़ा। आइए सुने उनकी रचना वीरों का कैसा हो बसंत। अभी हमने जिस बसंत की बात की, उस बसंत में और वीरों के बसंत में कितना बड़ा अंतर है। वीरों के बसंत की बात ही कुछ और है, वो अपने को देश के लिए मर मिटने को बसंत मानते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना सुनते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमालय से पुकार, है उदत गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नव अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने को आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। गलबाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुषवाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भरते वो छंद नहीं, है कलम बंधे स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत।
कविता कहानी बाल रचना गीत संगीत सुनने के लिए लॉग ऑन करें हिंदयुग्म.com।